एकत्र ज्ञान गोष्ठी। आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे दौर की बात करेंगे जब थिएटर, आप कह सकते हैं, सिर्फ कहानी सुनाने की जगह नहीं रहा, वो समाज का आईना बन गया और विचारों की एक प्रयोगशाला भी।
हाँ बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं आधुनिक नाटक की, यानी मॉडर्न ड्रामा की।
हाँ, और इस मतलब इस दिलचस्प सफर में हमारी गाइड होंगी क्रिस्टन ई शेपर्ड बैर। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और थिएटर की दुनिया की जानी मानी विशेषज्ञ मानी जाती हैं।
अच्छा,
तो हम उनके विश्लेषण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस दौर में ऐसा क्या खास था जिसने नाटक की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।
और ये सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है, है ना? आज हम जो फिल्में देखते हैं या वेब सीरीज वगैरह, उनमें कहानी कहने के जो तरीके इस्तेमाल होते हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी दौर में मिलती हैं। तो ये समझना कि उस वक्त थिएटर का मकसद क्या था, वो क्या हासिल करना चाहता था, वो हमें आज की कला और मीडिया को समझने में भी मदद करता है।
बिल्कुल। तो क्रिस्टन ई शेफर्ड बैरा की बात करें जरा। जैसा आपने बताया, वो ऑक्सफोर्ड में अंग्रेजी और थिएटर स्टडीज की प्रोफेसर हैं और थिएटर पर उनका काम बहुत गहरा और जाहिर सम्मानित है।
लेकिन उनकी खास बात है जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, वो उन्हें थोड़ा अलग बनाती है। वो विज्ञान और थिएटर के बीच का जो रिश्ता है उसे खंगालती हैं।
अच्छा।
हाँ, उनकी किताब है साइंस ऑन स्टेज, वो इसी पर है। ये सोचना ही कितना मजेदार है कि डार्विन या फ्रॉयड जैसे वैज्ञानिकों के विचारों ने सिर्फ नाटकों के विषय नहीं बदले।
सही कहा। वो ये दिखाती हैं कि विज्ञान सिर्फ मतलब प्रयोगशाला में बंद नहीं था, वो थिएटर के अंदर घुसकर एक तरह से उसकी आत्मा को बदल रहा था।
वाह।
और यही चीज उनके विश्लेषण को एक अनूठी धार देती है।
तो फिर शेफर्ड बेनमेरी के विश्लेषण का निचोड़ क्या है, वो क्या कहती हैं?
वो कहती हैं कि आधुनिक नाटक, जो मोटे तौर पर मान लीजिए 1880 से 1950 के दशक तक चला, पर जिसका असर आज भी दिखता है,
हाँ,
वो सिर्फ एक टाइम पीरियड नहीं है, ये एक पूरा कला आंदोलन था। एक ऐसा आंदोलन जो उस समय की बड़ी ताकतों जैसे विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीति, बदलता हुआ समाज, इन सबसे सीधे टकरा रहा था, उनसे जूझ रहा था।
अच्छा, तो एक तरह का संघर्ष था।
हाँ, और वो ये सवाल उठाती हैं कि इस नाटक की आधुनिकता आखिर थी क्या चीज। ये सिर्फ नया होना नहीं था, ये जानबूझकर सचेत रूप से अतीत की परंपराओं से नाता तोड़ना था। एक तरफ तो यथार्थवाद यानी रियलिज्म पर जोर था, मतलब जिंदगी जैसी है उसे वैसा ही दिखाओ बिना किसी लाग लपेट के।
हाँ बिल्कुल, असलियत,
सामाजिक सच्चाइयां, मनोवैज्ञानिक उलझने, सब कुछ मंच पे ले आओ।
लेकिन कहानी शायद यहीं खत्म नहीं होती।
बिल्कुल नहीं। दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही यथार्थवाद थोड़ा जमा, उसी के खिलाफ आवाजें उठने लगी।
अच्छा,
क्यों? कलाकारों को लगा कि सिर्फ बाहरी सच्चाई दिखा देना काफी नहीं है, मन के अंदर की दुनिया का क्या, सपनों का, भावनाओं का, आत्मा का, उसे कैसे दिखाएं?
हाँ, ये मुश्किल है।
और यहीं से जन्म हुआ कई विरोधी यथार्थवादी आंदोलनों का, जिन्हें हम आमतौर पर वाद कह देते हैं। तो ये पूरा दौर एक तरह की कश्मकश का दौर था।
किसके बीच?
सच दिखाने की चाह और सच की सीमाओं को तोड़ने की बेचैनी के बीच।
अच्छा, ये दिलचस्प है।
और शेफर्ड बैर का विश्लेषण दुनिया भर के नाटक को समेटता है, स्कैंडिनेविया से लेकर जर्मनी, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका तक। वो यथार्थवाद, प्रतीकवाद, अभिव्यक्तिवाद जैसे मुख्य आंदोलनों को देखती हैं। विज्ञान और मनोविज्ञान के असर पर तो बात करती हैं, साथ ही ये भी देखती हैं कि थिएटर चलाने के तरीके कैसे बदले, जैसे कैसे छोटे आजाद थिएटर जरूरी हो गए।
हाँ, ये भी जरूरी है।
कैसे डायरेक्टर की भूमिका अहम हो गई और कैसे थिएटर राजनीति का हथियार बना, जैसा बर्तोल्ड ब्रेख्त ने किया। वो दिखाना चाहती हैं कि नाटक अपने तूफानी दौर से लगातार बात कर रहा था, उसे बदल रहा था और उससे खुद भी बदल रहा था।
चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। शुरुआत करते हैं, जैसा आपने कहा, यथार्थवादी क्रांति से। हेनरिक इब्सन का नाम तो शायद सबसे पहले आता है, उन्हें अक्सर आधुनिक नाटक का पिता भी कहा जाता है।
हाँ बिल्कुल।
उन्होंने क्या किया कि उस जमाने के जो बने बनाए फॉर्मूला वाले नाटक होते थे, जिन्हें सुघड़ नाटक या वेल मेड प्ले कहते थे,
हाँ,
जिनमें सब कुछ तय होता था,
हाँ,
उनको लिया और उनमें असल जिंदगी के मुद्दे डाल दिए। सोचिए, और डॉल्स हाउस में उन्होंने पति पत्नी के रिश्ते और औरत की आजादी पर सवाल उठाए।
और घोष में खानदानी बीमारियों और सामाजिक पाखंड की बात की। ये उस समय के लिए मतलब बहुत बड़ी, बहुत बोल्ड बातें थी।
हाँ, हंगामा मच गया होगा।
बिल्कुल, इब्सन ने थिएटर को एक तरह से बहस का मंच बना दिया। अब लोग नाटक देखकर सिर्फ मनोरंजन नहीं करते थे, बल्कि सोचते थे, असहमत होते थे, बहस करते थे। इसे समस्या नाटक या प्रॉब्लम प्ले कहा गया।
अच्छा, यानी थिएटर का मकसद बदल रहा था।
हाँ, उसका लक्ष्य समाज की दुखती रख पर हाथ रखना बन गया।
और फिर आते हौगे स्ट्रिनबर्ग, उन्होंने यथार्थवाद को और आगे बढ़ाया, जिसे शायद प्रकृतिवाद कहते हैं।
हाँ, प्रकृतिवाद। मिस जूली जैसे नाटकों में आप देखेंगे कि किरदार अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि और अंदर की जो मनोवैज्ञानिक ताकतें हैं उनके हाथों मजबूर दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी किस्मत खुद नहीं लिख सकते, वो हालात के शिकार हैं।
ये तो काफी निराशाजनक लगता है।
है, लेकिन स्ट्रिनबर्ग यहीं नहीं रुके। कमाल की बात यह है कि उन्होंने बिल्कुल उल्टी दिशा में भी काम किया।
अरे वाह, कैसे?
उन्होंने अ ड्रीम प्ले जैसे नाटक लिखे जो यथार्थवादी बिल्कुल नहीं थे। वो सपनों जैसे थे, अजीब और अंदरूनी सच्चाई दिखाने वाले। ये अभिव्यक्तिवाद की तरह की शुरुआत थी।
मतलब एक ही लेखक यथार्थ और अयथार्थ दोनों में काम कर रहा था।
हाँ, ये दिखाता है कि सच्चाई को पकड़ने के लिए शायद एक रास्ता काफी नहीं था। कलाकार नए नए औजार, नए नए तरीके तलाश रहे थे।
तो जैसा आपने कहा, यथार्थवाद ने सच्चाई दिखाने का वादा तो किया, पर कई कलाकारों को लगा कि ये सिर्फ बाहरी दुनिया तक ही सीमित रह जाता है। मन की गहराइयां, अनदेखे डर, आत्मा की पुकार, ये सब कैसे दिखाया जाए?
बिल्कुल, और यहीं से विरोधी यथार्थवादी सोचपन भी। इनमें से कुछ अहम वादों को समझना जरूरी है। एक था प्रतीकवाद, सिंबलिज्म।
इसमें क्या खास था?
इसमें बाहरी डिटेल के बजाय मूड, रहस्य, इशारों पर जोर था। भाषा ज्यादा काव्यात्मक होती थी। खामोशी का भी बहुत मतलब होता था। मकसद था वो महसूस कराना जो सीधे कहा नहीं जा सकता। एक तरह की अनदेखी दुनिया को पकड़ने की कोशिश।
रहस्यमय।
फिर आया अभिव्यक्तिवाद, जिसके बीज स्ट्रिनबर्ग में दिखे थे और जो जर्मनी में खूब पनपा। इसने कहा, बाहरी दुनिया जैसी दिखती है वो जरूरी नहीं, जरूरी वो है जो किरदार के मन के अंदर चल रहा है।
तो स्टेज पर कैसे दिखाते थे इसे?
तो स्टेज पर दुनिया अक्सर टूटी फूटी अजीब सी दिखती थी। टेढ़े मेढ़े सेट, तेज या अजीब रोशनी, चीखते चिल्लाते किरदार, ये सब नायक की अंदरूनी हालत, उसके मानसिक तूफान को दिखाने का तरीका था।
अच्छा,
यानी बाहर की दुनिया अंदर के मन का आईना बन गई।
हाँ बिल्कुल, लक्ष्य था अंदर के तूफान को बाहर लाना।
बाहर लाना।
अब आते हैं उस अनोखे पहलू पर जो शेफर्ड बैरेट उजागर करती हैं, विज्ञान का थिएटर पर असर। ये मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगा।
हाँ, ये उनके विश्लेषण का एक बहुत मजबूत पॉइंट है।
ये सिर्फ कहानी का विषय नहीं था, बल्कि कहानी कहने का तरीका बदल रहा था। डार्विन के विचार कि इंसान अपनी आनुवंशिकता और माहौल से कितना प्रभावित होता है।
हाँ, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट,
वो प्रकृतिवादी नाटकों का आधार बने। किरदार अब सिर्फ अपनी इच्छा से काम नहीं करते थे, बल्कि जैविक और सामाजिक ताकतों के शिकार लगते थे, है ना?
बिल्कुल। और फिर फ्रॉइड का मनोविज्ञान, उसने तो जैसे नाटक लिखने वालों को एक खजाना ही दे दिया। अब चेतन मन, दबी हुई इच्छाएं, सपनों का मतलब, इन सब ने किरदारों को एक नई गहराई दी।
हाँ, वो सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं रहे होंगे।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जटिल हो गए। उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा था जो अक्सर उनकी बातों और कामों से बिल्कुल अलग होता था। अभिव्यक्तिवादी नाटक तो जैसे सीधे अवचेतन मन को ही स्टेज पर ले आए।
यहाँ तक कि आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत का भी असर पड़ा। ये तो कमाल है।
हाँ, जब समय और स्थान निरपेक्ष नहीं रहे तो कहानी कहने का जो सीधा सरल लीनियर तरीका था वो भी टूटने लगा। नाटककार समय के साथ खेलने लगे, कहानी आगे पीछे जाने लगी, किरदार बदलने लगे, अस्थिर हो गए। शेफर्ड बैरेंस इसे एक नाम देती हैं, नाटकीय ज्ञानोमीमांसा।
ये थोड़ा भारी शब्द है।
हाँ, मतलब असलियत को जानने और उसे स्टेज पर दिखाने का एक नया तरीका जो विज्ञान से प्रभावित था। हम कैसे जानते हैं, हम क्या दिखा सकते हैं, ये सवाल अहम हो गए।
लेकिन नाटक सिर्फ कागज पर तो नहीं होते, उन्हें खेलने के लिए मंच चाहिए, दर्शक चाहिए।
हाँ, और शेफर्ड बैरे इस पर बहुत जोर देती हैं कि आधुनिक नाटक स्वतंत्र थिएटर आंदोलन, इंडिपेंडेंट थिएटर मूवमेंट के बिना मुमकिन ही नहीं था।
ये क्या था?
पेरिस, लंदन, बर्लिन जैसी जगहों पर छोटे छोटे सदस्यता पर चलने वाले थिएटर खुले। ये बड़े कमर्शियल थिएटरों के दबाव और सरकारी सेंसरशिप से मतलब काफी हद तक आजाद थे।
अच्छा, तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते थे।
बिल्कुल, और इसी आजादी की वजह से वो इब्सन, स्ट्रिनबर्ग, शॉ जैसे लेखकों के बोल्ड और विवादास्पद नाटक दिखा पाए जिन्हें मेनस्ट्रीम थिएटर कभी हाथ नहीं लगाता। इन छोटे थिएटरों का मकसद पैसा कमाना नहीं था, बल्कि कला में नए प्रयोग करना और समाज में बहस छेड़ना था। इन्होंने ही नए नाटक को पनपने की जमीन दी।
और इसी दौर में निर्देशक यानी डायरेक्टर की भूमिका भी बहुत अहम हो गई है ना।
हाँ, बहुत ज्यादा। पहले डायरेक्टर का काम बस एक्टर्स को बताना होता था कि कहाँ खड़े होना है, कैसे बोलना है, लेकिन एडोल्फ आपिया, एडवर्ड गोर्डन क्रेग जैसे लोगों ने निर्देशक को एक कलाकार, एक विजनरी का दर्जा दिया।
मतलब वो पूरे नाटक को एक साथ देखता था।
हाँ, जो नाटक की हर चीज, एक्टिंग, सेट, लाइटिंग, संगीत, सबको मिलाकर एक संपूर्ण कलाकृति बनाता है। उन्होंने स्टेज डिजाइन और लाइटिंग में क्रांति ला दी, जिससे मूड और माहौल बनाने में बहुत मदद मिली।
और दर्शकों का क्या, उनके साथ रिश्ता कैसे बदला?
वो भी बदला। पहले दर्शक आराम से बैठकर तमाशा देखते थे, अब उन्हें सोचने, सवाल करने और कभी कभी तो असहज महसूस करने के लिए भी उकसाया जाने लगा।
अच्छा।
हाँ, थिएटर अब सिर्फ पलायन की जगह नहीं रहा, बल्कि टकराव और सोच विचार की जगह भी बन गया। दर्शक अब पैसिव नहीं, एक्टिव भागीदार बनने लगा था।
और ये टकराव अक्सर राजनीतिक भी होता था, जैसा आपने पहले जिक्र किया।
हाँ, थिएटर सामाजिक और राजनीतिक आलोचना का एक ताकतवर मंच बन गया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। उनके नाटक, जिन्हें विचारों का नाटक, ड्रामा ऑफ आइडियाज कहते हैं।
हाँ, उनमें डायलॉग बड़े मजेदार होते हैं।
हाँ, हंसी मजराक और तेज तरह डायलॉग्स के जरिए वो पूंजीवाद, युद्ध और वर्ग भेद जैसे गंभीर मुद्दों पर चोट करते थे। उनका मकसद साफ था, अपने समाजवादी विचारों को फैलाना और लोगों को सोचने पर मजबूर करना।
लेकिन राजनीतिक थिएटर की बात हो और बर्तोल्ट ब्रेख्त का जिक्र ना हो, ये तो नामुमकिन है।
बिल्कुल नामुमकिन। ब्रेख्त जर्मनी के नाटककार और निर्देशक थे, और उनके विचार बहुत ही क्रांतिकारी थे। उन्होंने एपिक थिएटर या एपिक थिएटर का सिद्धांत दिया।
वो यथार्थवाद के भ्रम को तोड़ना चाहते थे।
भ्रम? किस तरह का भ्रम?
वो भ्रम कि आप सचमुच की घटना देख रहे हैं।
ब्रेख्त नहीं चाहते थे कि दर्शक कहानी में पूरी तरह डूब जाएं और किरदारों से इतना जुड़ जाएं कि सोचना ही बंद कर दें।
अच्छा, तो उन्होंने क्या किया इसके लिए?
इसके लिए उन्होंने एक खास तकनीक अपनाई, अलगाव प्रभाव, वरफ्रेमडुंग्स इफेक्ट या एलियनेशन इफेक्ट।
ये कैसे काम करता था?
सोचिए, जैसे फिल्म देखते हुए अचानक हीरो कैमरे में देखकर आपसे बात करने लगे।
हाँ हाँ।
या स्टेज पर सेट बदलने वाले लोग आपको साफ दिखें। ब्रेख्त ऐसी ही चीजें करते थे। गानों का इस्तेमाल, तख्तियां लगाना जिन पर लिखा हो कि आगे क्या होगा, किरदारों का सीधे दर्शकों से बात करना
ताकि दर्शक को याद रहे कि ये नाटक है।
बिल्कुल, मकसद ये था कि दर्शक भावुक होकर बह ना जाएं। वो थोड़ा पीछे हटकर सोचे, अरे हाँ, ये तो नाटक है और ये जो दिखा रहे हैं इसका हमारी असली दुनिया, हमारे समाज और राजनीति से क्या लेना देना है।
यानी दर्शक को एक्टिव रखना।
एक्टिव, सोचने वाला, आलोचना करने वाला और शायद दुनिया को बदलने वाला दर्शक, ये उनका लक्ष्य था।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो दुनिया बहुत बदल गई, उसका नाटक पर क्या असर पड़ा?
हाँ, दुनिया बदली और नाटक भी। आधुनिक नाटक खत्म नहीं हुआ, पर उसका रूप बदला। युद्ध की भयावहता, जिंदगी की बेमतलब लगने वाली सच्चाई, ये सब एब्सर्ड थिएटर में नजर आया।
जैसे सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडो।
हाँ बिल्कुल, या यूजीन इयोनेस्को के नाटक। इनमें अक्सर कोई साफ कहानी नहीं होती, भाषा टूटी फूटी होती है और किरदार अजीबो गरीब, बेतुके हालात में फंसे होते हैं। ये उस दौर की नाउमीदी और भ्रम को दिखाता है।
और इसके अलावा
और भी कई धाराएं और विचारक सामने आए, जैसे एंटोनिन आर्टॉट का क्रूरता का रंगमंच,
थिएटर ऑफ क्रूल्टी।
बाप रे, नाम ही डरावना है। हाँ, वो शब्दों से ज्यादा शरीर, आवाज और रस्मों पर जोर देता था, ताकि दर्शकों की आत्मा तक कुछ झकझोर दिया जाए। साथ ही नाटक में हाशे की आवाजों को जगह मिली, महिला लेखिकाएं, अलग अलग नस्लों और संस्कृतियों के लोग।
अच्छा।
नाटक लगातार अपने समय के नए सवालों जैसे ग्लोबलाइजेशन, पहचान, टेक्नोलॉजी से जूझता रहा, और मतलब आज भी जूझ रहा है।
तो अगर हम शेफर्ड बेयर के विश्लेषण से कुछ खास बातें, कुछ मुख्य संदेश निकालें, तो वो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से पहली बात तो यही कि आधुनिक नाटक की जान यथार्थवाद और उसके विरोध की कश्मकश में थी। दुनिया को हूबहू दिखाने की चाह और उस चाह से आगे निकलकर मन की गहराइयों या विचारों को दिखाने की कोशिश, इसी तनाव ने नए नए प्रयोगों को जन्म दिया।
हाँ, ये बिल्कुल साफ दिखता है। दूसरी बात?
दूसरी अहम बात है विज्ञान का कला पर गहरा असर। डार्विन और फ्रॉयड ने सिर्फ डॉक्टरों या वैज्ञानिकों को ही नहीं, नाटक लिखने वालों को भी इंसान को समझने का नया नजरिया दिया। किरदार अब सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं थे, वो अपनी बायोलॉजी, अपने माहौल और अपने अनजाने मन की उलझनों से भी घिरे थे। ये एक बड़ा बदलाव था।
तीसरा, आपने बताया था थिएटर सामाजिक और राजनीतिक बहस का अखाड़ा बन गया।
हाँ, इब्सन से लेकर शॉ और ब्रेख्त तक नाटककारों ने मंच का इस्तेमाल समाज पर सवाल उठाने, सत्ता को चुनौती देने और बदलाव की आवाज बुलंद करने के लिए किया। थिएटर का एक साफ रोल बन गया, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जागृति भी।
और चौथा?
चौथा, नाटक सिर्फ लिखा नहीं गया, उसे मंच पर लाने का तरीका भी बदला। छोटे आजाद थिएटरों ने हिम्मत दिखाई और निर्देशक ने नाटक को एक संपूर्ण कला अनुभव बनाने का बीड़ा उठाया। परफॉर्मेंस खुद एक अहम चीज बन गई।
और पांचवा?
आधुनिक इंसान की जटिल और खंडित तस्वीर सामने आई। किरदार ज्यादा मनोवैज्ञानिक, ज्यादा असली और ज्यादा उलझे हुए नजर आने लगे। उनमें वो अंतर्विरोध दिखने लगे जो हम सब अपने अंदर कहीं ना कहीं महसूस करते हैं।
अगर इनमें से किसी एक बात को आज के भारत से जोड़कर देखें तो शायद ये यथार्थवाद बनाम अयथार्थवाद वाली बात बड़ी दिलचस्प है। हम रोज टीवी पर, फिल्मों में, विज्ञापनों में ये सब देखते हैं।
हाँ बिल्कुल,
कुछ कहानियां बिल्कुल सच्ची घटना की तरह दिखाई जाती हैं, हमें यकीन दिलाने की कोशिश होती है। दूसरी तरफ बहुत कुछ एकदम फिल्मी, सपनों जैसा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। ये दोनों तरीके हमें कैसे प्रभावित करते हैं? क्या ब्रेख्त की तरह आज का मीडिया हमें कभी अलर्ट करता है कि ये सिर्फ कहानी है, जरा सोचो इसके पीछे क्या है, या हम बस बह जाते हैं?
ये सोचने वाली बात है।
सही कहा।
शेफर्ड बेयर के विश्लेषण से कुछ ऐसे विचार निकलते हैं जो इस पूरी कहानी का सार पकड़ते हैं। जैसे पहला विचार ये कि
आधुनिक नाटक की पहचान कोई एक स्टाइल नहीं बल्कि दुनिया को दिखाने, यथार्थवाद और अंदरूनी दुनिया को जाहिर करने, विरोधी यथार्थवाद के बीच का लगातार चलने वाला, कभी तनाव भरा कभी रचनात्मक संवाद है। यही उसकी असली ताकत थी।
बिल्कुल। दूसरा विचार ये कि विज्ञान के सिद्धांत सिर्फ विषय नहीं थे, उन्होंने किरदारों को समझने का व्याकरण ही बदल दिया। इंसान की प्रेरणा अब सिर्फ उसकी मर्जी नहीं थी बल्कि बायोलॉजी, माहौल और अवचेतन का एक जटिल जाल थी। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग ज्ञान क्षेत्र एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं।
और तीसरा, ब्रेख्त वाला पॉइंट। ब्रेख्त ने जो यथार्थवाद की चौथी दीवार तोड़ी वो सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं था, उनका मकसद एक नया दर्शक बनाना था। ऐसा दर्शक जो दिमाग से सोचे, जज्बात में बह न जाए और जो कुछ देख रहा है उस पर सवाल उठाए, उसके राजनीतिक मायने समझे। दर्शक को बदलना ये उनका बड़ा लक्ष्य था।
तो सवाल ये उठता है कि इस सब इतिहास को जानने का आज क्या फायदा? इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
हाँ, क्या करें जान के?
कई तरीके हैं। एक तो जैसा आप कह रही थी, मीडिया को बेहतर समझना, मीडिया लिटरेसी जिसे कहते हैं।
हाँ,
उसा जा रहा है और कब जानबूझकर स्टाइल या प्रतीक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमें ज्यादा जागरूक पाठक और दर्शक बनाता है।
मतलब हम आसानी से बह नहीं जाएंगे।
हाँ, जब कोई फिल्म का किरदार सीधे कैमरे में देखता है तो हम समझ सकते हैं कि अरे ये ब्रेख्त वाली तकनीक है, शायद हमें सोचने पर मजबूर करने के लिए।
अच्छा, और दूसरा?
दूसरा, समाज बदलने में कला की भूमिका को पहचानना और उसकी कदर करना। जब हम देखते हैं कि कैसे 100 साल पहले थिएटर ने उन मुद्दों को उठाया जिन पर बात करना भी मुश्किल था, तो हम आज की उस कला की ज्यादा कदर कर पाते हैं जो मुश्किल सवाल उठाती है, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, पर्यावरण हो या कुछ और। कला सिर्फ सजावट नहीं, एक ताकत हो सकती है।
और तीसरा?
तीसरा, नए विचारों और परंपरा के टकराव को समझना। आधुनिक नाटक का पूरा इतिहास ही पुराने ढर्रे को तोड़ने और नया रास्ता बनाने का इतिहास है। हर नया आंदोलन पिछले वाले पर सवाल उठाकर ही आगे बढ़ा। यह हमें सिखाता है कि किसी भी फील्ड में तरक्की अक्सर स्थापित चीजों को चुनौती देने से ही होती है। सवाल पूछना जरूरी है।
मेरे लिए तो सबसे चौंकाने वाली बात शायद यही है कि विज्ञान और कला कितने गहरे जुड़े हो सकते हैं। हम अक्सर उन्हें दो बिल्कुल अलग दुनिया मानते हैं, पर आधुनिक नाटक दिखाता है कि वो एक दूसरे को कैसे सींच रहे थे, कैसे प्रभावित कर रहे थे।
हाँ, ये वाकई कमाल है। और मेरे लिए आखिरी ख्याल ये है कि आधुनिक नाटक की असली विरासत शायद ये है कि उसने थिएटर को एक ऐसी जगह बनाया जहां हम लगातार बदलते हुए समाज में इंसान होने का मतलब तलाश सकें। ये एक ऐसी प्रयोगशाला थी जहां मानवता खुद को समझने की कोशिश कर रही थी, और वो कोशिश आप देखें तो आज भी अलग अलग रूपों में जारी है।
सही कहा। थिएटर सिर्फ गुजरे जमाने की चीज नहीं, वो आज भी हमें सोचने और महसूस करने के नए तरीके दे सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारे दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।